नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।